हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उधर दूसरी ओर झलक आदित्य के साथ साइट पर जाकर प्रोजेक्ट की बारीकी से जांच करने के बाद वापस मल्होत्रा हाउस पहुंची थी। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी नज़र अपने परिवार पर पड़ी। सभी एक साथ मायूस से बैठे हुए थे और झलक का ही इंतज़ार कर रहे थे। झलक उनको देखते हुए कहने लगी, आप लोगों को मुझे लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर आप लोग मेरी वजह से इस तरह परेशान क्यों दिख रहे हैं? मैं आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करना जानती हूँ। फिर आपको किस बात की चिंता है? मुझे आपकी फ़िक्र समझ में आती है, लेकिन मैं आप लोगों के चेहरे पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देख सकती। और वैसे भी जिन लोगों ने हमसे सीधे मुंह बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा था, वो अब खुद गिर चुके हैं। उनके घमंड का महल भर भरा कर ठहर चुका है और उसे तोड़ने का सही वक्त भी आ गया है। आप लोग बेवजह परेशान मत होइए, कल मेरे प्रोजेक्ट का लॉन्च है। जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट ऑनलाइन सक्सेस हो जाएगा, मेरे लिए सारी प्रॉब्लम अपने आप आसान हो जाएंगी। झलक की बातों में आत्मविश्वास साफ नज़र आ रहा था। वहीं दिग्विजय जी बलवीर जी से सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद घर लौट आए थे। उन्होंने झलक की सारी बातें भी सुन ली थीं। वो शांत स्वर में बोले, झलक जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी एक हफ्ते में ये सारा ड्रामा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारी बेटी की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और मेरे बच्चे, तुम भी समाज के सामने अपना सिर ऊँचा करके चल पाओगे। जिस समाज के सामने तुम्हें झुकाया गया था, वही समाज एक दिन खुद तुम्हें अपनाएगा। दिग्विजय जी ये कहते हुए नमी भरी आंखों से अपने बेटे को देख रहे थे। फिलहाल खाना वगैरह खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन झलक की आंखों के सामने से सिद्धार्थ का यूं उसके सामने आना और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कहना हट ही नहीं रहा था। उसी के साथ उसे आदित्य का चेहरा भी याद आ गया। आदित्य पहली बार उसके लिए रोया था। आदित्य की आंखों के आंसू जब उसे अपने कंधे पर महसूस हुए थे, वही एहसास बार बार उसके दिल को बेचैन कर रहा था। उसे अजीब सा लग रहा था। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी और धीरे से बोली, झलक तो किसी आदमी के आंसुओं से इस तरह नहीं पिघल सकती। तूने अपने दिल पर नफरत की एक मजबूत परत चढ़ा रखी है। किसी आदमी के आंसू उस परत को हटा नहीं सकते, उसे पिघला नहीं सकते। तुझे शांत होना होगा, तुझे पूरी तरह से शांत रहना होगा। झलक खुद को ही समझा रही थी कि वो आदित्य के आंसुओं से प्रभावित ना हो। उधर झलक ने तेजी से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का फैसला कर लिया था। वो अब बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती थी। आखिर अगले हफ्ते बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड का ऐलान होने वाला था। झलक ने अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सीक्रेट रखा हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी डिटेल्स अभी दुनिया के सामने आए। कल का दिन उसके लिए बेहद खास और बड़ा होने वाला था। उसने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की थी और उसे पूरा विश्वास था कि यही प्रोजेक्ट उसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिलाएगा। इस बार उसने पूरी कोशिश की कि वो भरपूर नींद ले। वो किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहती थी। अगले दिन उसे कुछ चुनिंदा विशेषज्ञों के सामने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का सीक्रेट लॉन्च करना था और वो पूरी तरह से तैयार थी। उसने आदित्य को मैसेज भी कर दिया था कि वो अगले दिन पूरे दिन के लिए रेडी रहे। सुबह सुबह ही उन्हें साइट पर निकलना था, क्योंकि वहां वही लोग आने वाले थे जिन्हें झलक ने खुद इनवाइट किया था। अब झलक को बस सुबह होने का इंतजार था। वहीं दूसरी ओर अनामिका रणविजय के वहां आने को सुनकर काफी बेचैन हो गई थी। उसका दिल बार बार कह रहा था कि वो रणविजय के सामने जाए और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे। जब तक वो उसे थप्पड़ नहीं मार लेती, शायद उसे सुकून नहीं मिलने वाला था। अनामिका खुद पर भी गुस्सा कर रही थी कि उसने इतने स्वार्थी और झूठे इंसान को अपना दोस्त माना। कहीं ना कहीं वो उसकी ओर आकर्षित भी हो गई थी, लेकिन अब उसका असली सच उसके सामने आ चुका था। फिलहाल अनामिका केवल खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार सुबह हो गई। झलक तैयार होकर सबसे पहले आदित्य को फोन करने लगी। उसने एक के बाद एक कॉल करना शुरू कर दिया। आदित्य राणा को कभी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। उसे लगा था कि 8 बजे आराम से प्रोजेक्ट साइट पर पहुंच जाएंगे, लेकिन झलक ने सुबह 5 बजे से ही उसे कॉल करना शुरू कर दिया था। तीसरी बार फोन बजा तो आदित्य ने नींद में ही कॉल उठाया। तभी आदित्य ने आधी नींद और थोड़े से चिढ़े हुए अंदाज में कहा, कौन है, क्यों परेशान कर रहे हो आधी रात को? तब झलक की खनकती आवाज आदित्य के कानों में पड़ी, गुड मॉर्निंग मिस्टर राणा, आप अभी तक सो रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या कि आज हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च है? आप इस तरह सो नहीं सकते। झलक ने एक बार और बात रिपीट करते हुए सख्त आवाज में कहा, मिस्टर राणा अभी तक सो रहे हैं आप? आज हमारे प्रोजेक्ट का इतना बड़ा दिन है और आप ऐसे सो सकते हैं? झलक की तेज आवाज सुनते ही आदित्य एकदम से उठ बैठा। इस वक्त वो सिर्फ लोअर और बनियान में ही था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि झलक उसके घर के नीचे खड़ी है, वो हड़बड़ाते हुए उसी हालत में नीचे भाग आया। झलक ने जैसे ही एक नज़र भरकर आदित्य को देखा, उसका मजबूत और सुगढ़ शरीर साफ दिखाई दे रहा था। चौड़े कंधे, सख्त बाजू, मानो लोहे की तरह ढला हुआ शरीर। एक पल के लिए उसकी नज़र वहीं ठहरा गई, लेकिन तुरंत उसने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। उधर आदित्य को भी अचानक एहसास हुआ कि वो सिर्फ बनियान पहनकर झलक के सामने आ गया है। वो झेंप गया और जल्दी से वापस कमरे में भाग गया। आदित्य की इस हालत को देखकर झलक को हल्की सी हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया। कुछ ही देर में आदित्य फटाफट शर्ट पहनकर वापस आया और सीधे झलक के पीछे बाइक पर बैठ गया। झलक अपनी बाइक लेकर आई थी और बिना देर किए उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सुबह सुबह ठंडी हवा में झलक के पीछे बैठना आदित्य को एक अलग ही एहसास दे रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या आप सोई ही नहीं थी रात को? झलक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पूरी तरह ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, लेकिन आदित्य बार बार सवाल पूछे जा रहा था। आखिरकार झलक ने अचानक बाइक रोकी, हाथ बांधकर आदित्य की ओर घूरते हुए बोली, मिस्टर राणा, मैं सोई भी हूँ और पूरी रात सुकून से सोई हूँ। और हाँ, मैं रोज लगभग 5 बजे उठ जाती हूँ। अब आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों तो क्या मैं गाड़ी पर ध्यान दूँ? झलक के इस अंदाज से आदित्य का चेहरा थोड़ा उतर गया। वो मासूमियत से बोला, सुबह सुबह मुझे कॉफी पीने की आदत है और अभी मुझे नींद भी आ रही है। मैं ऐसे आपके साथ इतना लंबा सफर कैसे कर पाऊंगा? हमारी साइट अभी काफी दूर है। आदित्य की बात सुनकर झलक ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। अगले ही पल उसने अपने बैग से एक छोटी सी बोतल निकाली और आदित्य की तरफ बढ़ा दी। आदित्य ने बोतल देखते ही आंखें बड़ी कर ली और बोला, ये क्या, आप दारू लेकर आई हैं? मैं सुबह सुबह दारू नहीं पीता, आप दारू क्यों लाई हैं? झलक ने उसे घूरते हुए कहा, मिस्टर राणा, मुझे नहीं पता था कि आप में समझदारी नाम की भी कोई चीज नहीं है। आपको ये दारू कैसे दिखाई दे रही है? ये हॉट फ्लास्क है और इसमें आपकी गर्म कॉफी है। मुझे पता था कि सुबह आपका यही ड्रावा होगा, इसीलिए मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। और हाँ, एक कप से ज्यादा नहीं है इसमें, वैसे भी ज्यादा चीनी और ज्यादा कॉफी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। झलक की ये बात सुनकर आदित्य कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी। पहली बार उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी इस हद तक फिक्र की थी।
आदित्य ने अपना ज्यादातर वक्त अपने दादा के साथ बिताया था। उसके माता पिता भी थे, लेकिन वे ज्यादातर दूसरे बिजनेस संभालने के लिए विदेशों के ट्रिप पर रहते थे। राणा इंडस्ट्रीज कई देशों में फैली हुई थी, जिसे उसके माता पिता मिलकर संभालते थे, और यहाँ का बिजनेस आदित्य देख रहा था। उसे अपनी माँ के साथ बहुत कम समय मिला था, लेकिन जब भी मिलता, मिसेज राणा उसे बेहद प्यार और दुलार देती थीं। आज झलक की इस छोटी सी परवाह ने उसे अंदर तक छू लिया था। वो फटाफट बाइक पर ठीक से बैठ गया, सबसे पहले बोतल को ही हल्के से चूम लिया और फिर धीरे धीरे कॉफी को ऐसे सिप करने लगा जैसे कोई अनमोल चीज हो। कॉफी वाकई शानदार बनी थी। उधर झलक सावधानी से बाइक चला रही थी। कुछ मिनट बाद उसने कहा, अगर 5 मिनट में कॉफी खत्म नहीं हुई तो कहीं रोक देते हैं, पहले आप आराम से खत्म कर लीजिए। आदित्य तुरंत बोला, हाँ हाँ, मैं समझ चुका हूँ मैडम, अब चलिए जल्दी बढ़ते हैं। झलक ने हल्की मुस्कान के साथ बाइक की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो साइट के पास पहुंचकर गाड़ी रोक दी। आदित्य फटाफट पास के वॉशरूम की ओर गया, कपड़े ठीक किए, खुद को फ्रेश किया और पूरी तरह तैयार होकर बाहर आ गया। लेकिन आदित्य के जाने के लगभग 10 मिनट बाद ही झलक को जेट के रुकने की तेज आवाज सुनाई दी। देखते देखते कुछ लग्जरी गाड़ियां और एक प्राइवेट जेट वहां आकर रुका। तभी आदित्य भी फ्रेश होकर बाहर आ गया। झलक और आदित्य ने मिलकर आने वाले मेहमानों का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। और वे कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि पूरी की पूरी एक्सपर्ट टीम थी, जो झलक की बार बार की रिक्वेस्ट और उसके प्रभावशाली प्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर ही वहां आने को तैयार हुई थी। आज का दिन सच में बड़ा होने वाला था और झलक की असली परीक्षा अब शुरू होने जा रही थी।